नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु मसीह एक दुखी आया है द्वार तेरे। यीशु मसीह एक
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपके सम्मुख इस बात को बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से हग्गई नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास किस प्रकार मंदिर के निर्माण के बारे में हमें बता रहा है। और इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस संदेश के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है और पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से आपने मुझे अपनी आशीषों को बांटा है। मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा भी आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे और अपनी आशीषें मेरे साथ बांटेंगे। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में अनंत शांति और प्रेम को ग्रहण कर सके। हमारी विनती है कि आज के अध्ययन पर आप हमें बहुतायत से आशीषित करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातचीत करें ताकि वे इस बात को समझने पाए कि उनका जीवन कीमती है, बहुमूल्य है और यह आपकी ओर से दिया गया जीवन है। आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन को बचाना चाहते हैं, आप उनके जीवन को चाहते हैं। हाँ प्रभु, जो बीमार हैं, जो निराश हैं, उन्हें भी चंगाई और शांति दे ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सब इन दिनों हग्गई नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि मंदिर के ध्वंस होने के बाद इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया है। जी हाँ, पुनः निर्मित मंदिर को देखकर वृद्धों अर्थात बूढ़ों को सुलेमान के मंदिर का स्मरण आया जिसे सुलेमान ने बनवाया था। देखने में रमणीय और वैभव से परिपूर्ण था। वे विलाप करने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि वह उस मंदिर में उपस्थित होगा। परमेश्वर बड़ा छोटा, चमक दमक नहीं देखता है। जी हां, वह तो आज्ञा पालन और कार्य देखता है। उसने कहा कि सोना चांदी तो सब उसी के हैं, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको हिला देगा और अपने भवन को एक बार फिर अपनी महिमा से भर देगा। तो आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हग्गई नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। हग्गई 2:6-7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तु में आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर यहां क्या कर रहा है। वह उनका ध्यान, उनका मन और उनकी आंखें क्षणिक सांसारिक बातों से हटाकर इसराइल के लिए अपनी योजना की ओर आकर्षित कर रहा है। वह उन्हें भविष्य की ओर ले जाना चाहता है और वह भविष्य है प्रभु राज तक। मेरे मित्रों, आज हमें मसीही जीवन का गलत परिदृश्य को समझना बड़ा आसान है। आप एक सिक्का लीजिए और अपनी आंखों के बहुत ही अधिक निकट ले आएं, तो आपको सूरज नहीं दिखेगा क्योंकि वह छिप जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को छिपा लेता है। वर्तमान परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बोध होना है कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कि भलाई भविष्य में है। यदि आज आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ वहीं पर समाप्त हो गया। आपके लिए भलाई इंतजार कर रही है। लिखा है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर दंड देगा। कुछ ही देर में देखेंगे कि परमेश्वर महाक्लेश की चर्चा कर रहा है, जिसे यहोवा का दिन कहा गया है, और फिर वह पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन और हजार वर्षीय राज्य के मंदिर की स्थापना का उल्लेख करेगा और यहोवा के दिन की घटनाओं के विषय में भी हमें कहेगा। आगे लिखा है, मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। यद्यपि सुलेमान के मंदिर में और जरुबाबेल के मंदिर में और हेरोदेश द्वारा मंदिर को तोड़कर नया बनाने में अलग अलग भवन थे, परंतु परमेश्वर के लिए वह एक ही भवन था। उस मंदिर में प्रभु यीशु आया था जो परमेश्वर की महिमा था। यद्यपि वह मानवीय देह में था, हेरोदेश द्वारा निर्माणाधीन मंदिर पूरा बनने से पूर्व ही रोमी सेना द्वारा सन 70 में ध्वंस कर दिया गया था। आज वहां ओमर नामक मस्जिद बना हुआ है जिसे हटाना असंभव है, परंतु अंत समय में वहां परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा। यह भविष्यवाणी है जिसे महाक्लेश का मंदिर कहते हैं, और उसके बाद सहस्त्रकालीन मंदिर बनाया जाएगा। मेरे विचार में जब प्रभु यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा, तब मंदिर में परमेश्वर की महिमा अर्थात शकीना मंदिर में प्रवेश करेगी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। मेरे प्रियो, यह पद मनुष्य के पुत्र के चिन्हों का आकाश में प्रकट होना व्यक्त करता है, और इसके तुरंत बाद ही वह परमेश्वर की महिमा की चर्चा करता है। मेरे विचार में परमेश्वर की शकीना महिमा उस मंदिर में उपस्थित होगी जो महाक्लेश के समय इस पृथ्वी पर होगा, परंतु जब प्रभु उसमें वास करेगा तब वह परमेश्वर विरोधी नहीं होगा। उसमें ख्रिस्त विरोधी की मूर्ति नहीं होगी, वहां केवल प्रभु यीशु ही होगा। आगे लिखा है, मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा। मेरे मित्रों, आज यह बात विश्वास योग्य नहीं लगती है, क्योंकि पिछली शताब्दी का आगमन ही पहला विश्व युद्ध से आरंभ हुआ था और विश्व युद्ध संसार हिलाने वाली घटना थी। पैसों का मूल्य बहुत ही नीचे गिर गया था और विश्व युद्ध दो के बाद से तेल की समस्या ने संसार को हिलाकर रखा हुआ है। परंतु इस युग में पृथ्वी जब हिलेगी तो वह इन सबसे भी कहीं अधिक भयानक होगी। लिखा है, सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। यहां पर टीकाकार वर्णन करता है, वरन आरंभिक कलिसियाई पिता भी कहते हैं मनभावनी वस्तु। अलग अलग टीकाकार अपने टीका में इस बात को कहते हैं मनभावनी वस्तु। मनभावनी वस्तु को प्रभु यीशु कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवावस्था से ही इस विचार को ग्रहण नहीं कर पा रहा था कि प्रभु यीशु सारी जातियों का मनभावन होगा। कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं कि सब जातियों की मनभावनी वस्तु उद्धार करता होगा जो मसीह यीशु है, यह वे नहीं जानते हैं और इस भ्रम में वे ख्रिस्त विरोधी को स्वीकार कर लेंगे। ख्रिस्त विरोधी इस संसार का मसीहा होगा, वे उसे ग्रहण करेंगे और मेरे विचार में तो सब जातियों को प्रभु यीशु की लालसा नहीं होगी। आगे पढ़ने से इसका अर्थ हमें स्पष्ट होगा कि हगे हमें क्या बताना चाहता है। हगे नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, अब बताइए कि सब जातियों की लालसा क्या होगी। सुलेमान के मंदिर में करोड़ों रुपयों का सोना और बहुमूल्य पत्थर काम में लिए गए थे। सुलेमान का इतिहास पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने संपूर्ण विश्व का सोना एकत्र कर लिया हो। राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम से सब कुछ लूटकर ले गया था। आपको स्मरण होगा कि दूसरे राजा की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 से 17 पद में हिजकिया की चंगाई की बधाई देने बेबीलोन से राजदूत आए थे, जिन्हें हिजकिया राजा ने मूर्खता के कारण मंदिर के भंडार दिखा दिए थे, जिसके कारण आगे चलकर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और संपूर्ण खजाना लूटकर ले गया। मेरे प्रियो, बेबीलोन को सोने की बहुत लालसा थी और आज भी जाति जाति को सोने की लालसा है। हर एक मनुष्य सोने को प्राप्त करना चाहता है। यहां पर लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। जी हां, पृथ्वी पर जितना भी सोना चांदी है वह सब परमेश्वर का है और भविष्य में परमेश्वर के मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए सोने की कमी नहीं होगी। प्रभु राज का यह भावी मंदिर वास्तव में सुंदरता का प्रतीक होगा, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की है और उसमें जो कुछ है सब परमेश्वर का है। हगे आगे कहता है 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, 2:9 में, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की आने वाली महिमा, परमेश्वर इन अलग अलग मंदिरों को एक ही दृष्टि में देखता है। उसके कहने का अर्थ है कि प्रभु राज में मंदिर की महिमा पहले के किसी भी मंदिर से कहीं अधिक होगी। लिखा है, इस स्थान में, अर्थात वह स्थान जहां मंदिर बनाया गया, चाहे वह सुलेमान का मंदिर हो या जरुबाबेल का मंदिर हो या हेरोदेश का भावी मंदिर हो या आने वाला मंदिर हो, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वह जब जब यरूशलेम जाता है तब तब मंदिर के इस क्षेत्र पर जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां वह काम होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया है, शांति की स्थापना। प्रभु यीशु जब आएगा तब उसका चरण स्पर्श जैतून के पर्वत पर होगा और उस मंदिर परिसर में कदम रखते ही संसार में शांति आ जाएगी, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। जैसा कि वह इस पद में कहता है, वह शांति स्थापित करेगा। पहली बार जब वह आया था तब भी वह शांति लाया था, परंतु केवल सद्भावना वाले मनुष्यों के लिए, अर्थात केवल उनके लिए जिनके संबंध परमेश्वर के साथ उचित हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जी हाँ, वह ऐसी शांति लाया था जो सारी समझ से परे है, और यह शांति विश्वासी के मन में व्याप्त है। परंतु जब वह दूसरी बार आएगा तब वह विश्व शांति लेकर के आएगा, जिसकी आज संसार आस लगाए बैठी है। हर एक देश यही प्रयत्न कर रहा है कि संसार में शांति व्याप्त हो, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा शांति क्षणिक है, परंतु परमेश्वर द्वारा दिया गया शांति अनंत काल के लिए होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जी हाँ, प्रभु यीशु भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसा संसार के जैसा शांति मैं तुम्हें नहीं देता। आज लोग संसार की शांति के पीछे पड़े हुए हैं जो क्षणिक है, परंतु परमेश्वर का दिया हुआ शांति हमेशा के लिए बना रहेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सब जातियों की मन भावन वस्तुएं अर्थात भौतिक संपत्ता, सोना चांदी आदि, न कि प्रभु यीशु। कहने का अर्थ है कि वे संसार की उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु यीशु को नहीं। यहां कहने का अभिप्राय यह है कि जरुबाबेल के मंदिर की साज सज्जा से बहुत सारी कमी झलकती थी। उस समय सब कुछ पूरी हो जाएगी जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और राज करेंगे, लोग वहां भेंट लेकर के आएंगे। अतः यह अंश पृथ्वी पर प्रभु राज की स्थापना के संदर्भ में है। यहां पर परमेश्वर मंदिर निर्माताओं को भावी दर्शन प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखें। हमें अनंत परिदृश्य और हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य निमित्त इसी को देखें। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम वर्तमान परिस्थितियों से निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे संग है। एक प्रचारक ने सेवा का त्याग कर दिया क्योंकि वह पूरे वर्ष में एक ही मनुष्य को प्रभु की संगति में ला पाया था। यह एक ही मनुष्य अफ्रीका का सबसे महान परमेश्वर का दास हुआ, जो प्रवर्तक डेविड लिविंगस्टन के बाद दूसरा प्रचारक था जिसने अफ्रीका में प्रभावशाली प्रचार कार्य किया था, जिससे वह प्रचारक अपनी विफलता समझ रहा था। जी हां, वह उसकी सबसे बड़ी सफलता का समय था। हमें प्रत्येक घटना को हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन सफलताओं को दिलाना चाहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हगे हमें इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हम वर्तमान परिस्थितियों को देख करके हताश और निराश ना हो, परंतु इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करेगा, वसरते कि हम उसकी ओर लौटें, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस समय आपकी स्थिति क्या है। हो सकता है कि आप अपने जीवन से निराश हैं, हताश हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए भलाई की बातें हैं। इस वर्तमान से आप न डरें, परंतु परमेश्वर के उन उद्देश्यों को देखें जिसे उसने आपके लिए रखा है। सफलता की बातों को देखें, आशीष की बातों को देखें जो इसके बाद में है। इसलिए आप निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को समर्पित करें और निश्चय जानें कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देंगे। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आज गुना के सब से दिल मेरा नाशा सबब से दिल मेरा नाशाद है, माफ कर मेरे गुना, तुझसे मेरी फरियाद है। आज गुना के सबब से दिल शाद है, दोस्तों